असल जो कत्ल की जजा आ रही है वो आ गया, उस आयत की बजाय ये नंबर नोट कीजिएगा, ये है कत्ल की सजा। वमन यक्तुल मोमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वगदिब अल्लाहु अलैहि वलअना। रहा वो शख्स जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सजा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा, इस पर अल्लाह का गजब और इसकी लानत है और अल्लाह ने इसके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। आज कत्ल कितना आम है, अगर यह आयत आम कर दी जाती लिख के भी तो क्या लोग बचते ना, कितनी सजा है। कत्ल करने वाला एक दफ़ा कत्ल करता है, खुद उसके साथ क्या होगा, हमेशा की जहन्नम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दोस्त दुश्मन में तमीज़ करो, और जो तुम्हारी तरफ सलाम करने में पहल करे इसे फ़ौरन ना कह दिया करो कि तू मोमिन नहीं, यानी फ़ौरन जजमेंटल ना हुआ करो। अगर तुम दुनियावी फ़ायदे चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से वाले गनीमत हैं, एक वाक़या है जिसकी तरफ यहाँ इशारा है। आखिर इसी हालत में तुम खुद भी तो इससे पहले मुब्तला रह चुके हो, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, बस तहकीक से काम लो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। मुसलमानों में से वो लोग जो किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं, किस चीज़ से, जिहाद से और क्लास से, जो घर से सुनते हैं, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर, खुद से पूछें क्या मैं माजूर हूँ। माजूर कौन होता है, हैंडीकैप नहीं, जिसका उज़र हो। हर बंदा अपना उज़र खुद ढूँढे, घर से निकल के आ सकती थी तो नहीं आई, क्या सिर्फ इसमें आराम तलबी नहीं। ये तो बहुत अच्छा था कि हम सब घर ही रहते, बहुत आसान होता है, आने जाने का वक्त भी गया, मज़े से बैठे, ना कंघी की ना कुछ, घर में बैठा पढ़ा और पढ़ाया और ख़त्म। मैंने एक तवील अरसा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस को शाम को पढ़ाया, सुबह को क्लासेस होती थी अमेरिका में जिसमें साथी होते थे, तो रात की जो क्लासेस उस वक़्त कौन आएगा, तो मैं अकेली अपने घर से पढ़ाती थी। यकीन करें कि घर में पढ़ाना बहुत आसान लगता है, पढ़ना भी आसान लगता है, लेकिन जो कहीं जा के आ के जो रस्तों की गवाहियाँ और जो वो रास्ते की सौगतें और जो दूसरों से मिल के एनर्जी मिलती है वो वैसे नहीं मिल सकती। तो ये बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन से सुनना, उनके लिए जो नहीं आ सकते, जो दूर हैं, जो इधर नहीं रहते, और जो आ सकते हैं उनके लिए तो फिर ये एक प्रिविलेज है, जितना कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो फरमाया कि जो किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं, और वो जो, और इसमें सब उन मर्दों को भी कहिए जो बग़ैर मजूरी के, बग़ैर किसी उज़र के घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं मस्जिदों में जाने की बजाय, और वो जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं। ये बाप की तारीफ़ है, जो आके बैठते हैं उनके मुकाम को कोई नहीं पा सकता। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जान और माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बड़ा रखा है, अगरचे हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई का वादा फरमाया, मगर इसके यहाँ मुजाहिदों की खिदमतों का मुआवजा बैठ रहने वालों से बहुत ज़्यादा है। अल्लाह हम सब की कोशिशों को कबूल करें। इनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े दर्जे हैं और मगफरत और रहमत है, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। रह गए वो लोग जो फंसे हुए हैं, तो जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं, इनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की तो इनसे पूछा तुम किस हाल में मुब्तला थे, उन्होंने जवाब दिया हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे। ये वो मुसलमान हैं जो बग़ैर किसी उज़र के गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं और वहाँ फिर अपने दीन पे अमल नहीं कर सकते, और उनको जब मौत आएगी तो फरिश्तों की गवाही। इसको आप हाईलाइट कर लें, ये मुकालमा है ऐसे मुसलमानों और फरिश्तों के बीच में। फरिश्तों ने कहा क्या अल्लाह की ज़मीन वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत करते, ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है, वो बहुत बुरा ठिकाना है। हाँ वो मर्द और औरतें और बच्चे वाकई बेबस हैं जिनको निकलने का कोई रास्ता और ज़रिया नहीं मिलता, बईद नहीं कि अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। आगे फरमाया वमई यो हाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि यजिद फ़िल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ वमई यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही थुम्मा युद्रिकुल मौत फ़क़द बका अजरुहु अलल्लाहि व काना अल्लाहु गफूरन रहीम। जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और बसर औकात के लिए बड़ी गुंजाइश पाएगा, और जब अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकले फिर रास्ते ही में इसे मौत आ जाए तो इसका दर अल्लाह के ज़िम्मे वाजिब हो गया, और अल्लाह बहुत बख्शिश फरमाने वाला और रहीम है। हिजरतों की बात आती है, याद रखिए कि जब हम किताब को अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो बीच में से हिजरत का मरहला ज़रूर गुजरता है। हम अपनी सारी बुरी चीज़ों से हिजरत करके अल्लाह की तरफ आ जाएं, जितना अल्लाह की तरफ आते जाएंगे अल्लाह आपकी तरफ आएगा। देखिए हम सब जो कुरान पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ना बहुत आसान है, कब, जब हम सिर्फ इसको पढ़ने के लिए पढ़ें, पढ़ना बराए पढ़ना, पढ़ना बराए अजर, पढ़ना बराए सवाब, लेकिन अगर हमने अपनी कुछ आदतें बदलनी है, कुछ हिजरतें करनी है, तो फिर इसको गौर व फिक्र से पढ़ना पड़ेगा। इंसान को मनपसंद जगह छोड़नी पड़ती है, मनपसंद लोग छोड़ने पड़ते हैं, मनपसंद आदत छोड़नी पड़ती है। प्रायोरिटीज़ जब बदलती हैं तो वो कपड़े वो लिबास जो पहले दिल की खुशी से पहनते थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नतीजा क्या कि एक एक करके वो चीज़ें छूटती हैं। और अगर आप ये कह लें कि हिजरत और तन्हाई साथ साथ है, जब भी आप अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ेंगे आप खुद को तन्हा महसूस करेंगे। इन तन्हाइयों में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम उस मंजिल तक ना भी पहुंच सके जहां जाना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारा अजर अल्लाह के ज़िम्मे वाजिब हो गया। मारूफ वाक़या कई बार का आपने सुना होगा कि वो शख्स जो 100 लोगों को कत्ल कर चुका था, जब वो तौबा करके रास्ते में पहुँचा और बीच रास्ते में मौत आ गई, हालत में भी हिम्मत नहीं छोड़ी और थोड़ा सा आगे बढ़ा। बाद में दोनों तरह के फरिश्ते उसके पास आए कि ये हमारा बंदा है और ये हमारा बंदा है, तो आखिर में रहमत वाले फरिश्ते उसको क्यों ले गए? क्योंकि ज़मीन सिर्फ एक बालिश जो थी वो उस बस्ती के करीब थी जिधर से वो नेकियों की नियत से जा रहा था। ये है इल्म का रास्ता, वो रास्ता है कि इसके बीच में अगर हम मर भी गए, ना उस्ताद बन सके, ना हम कल वॉलंटियर बन सके, कल हम ना लोगों की खिदमत कर सके, लेकिन याद रखिए कि जो इल्म के रास्ते पे चलता है उसको अल्लाह उसका अजर वहीं डाल देता है, उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। अब इसके बाद अहकाम में से एक हुक्म और वो क्या है? कसर नमाज। इसकी सारी डिटेल्स आप सलात किताबो सलात में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ इस आयत का थोड़ा सा खुलासा देख लीजिए। वह इज़ा तरब तुम फिल अर्दी फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन तक्सुरू मिनस सलात। और जब तुम लोग सफ़र के लिए निकलो तो कोई हरज नहीं अगर तुम नमाज में कुछ कमी कर लो, ख़ास तौर पर जबकि तुम खौफ की हालत में हो, ख़ास तौर पर जबकि तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। और ऐ नबी, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और हालत जंग में इन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाओ, तो चाहिए कि इनमें से एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो, चाहिए कि एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और असलहा भी लिए रखे, फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए, और दूसरा गिरोह जिसने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी आकर तुम्हारे साथ पढ़े और वो होशियार भी रहे और अपने असलहे को लिए रखे, क्योंकि कुफार इस ताक में है कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान की तरफ से ज़रा गाफिल हो तो सही। फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा, वो तुम पर यकबारगी टूट पड़े। अलबत्त अगर बारिश की वजह से तकलीफ़ महसूस करो या बीमार हो तो असलहा रख देने में कोई हरज नहीं, फिर मगर फिर भी चौकन्ने रहो, यकीन रखो अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वा को नजाब तैयार कर रखा है। फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े बैठे और अपनी करवटों पर हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो, और जब इत्मीनान नसीब हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज दरहकीकत ऐसा फ़र्ज है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया। इन चंद आयात में नमाज के कई मसाइल बयान कर दिए गए। पहली बात यह, आप देखिए कि नमाज में सबसे पहली चीज़ नमाज, कसर नमाज। सफ़र की हालत में इंसान एक मकसद पे निकला होता है। इस्लाम में सफ़र हमेशा बामकसद होता है, बेकार घूमने के लिए नहीं आप जाते, जाएंगे भी तो उसके अंदर भी एक मकसद लेके जाएंगे कि अल्लाह ताला पे की कायनात पे गौर व फिक्र करते हुए लेके जाना है। अब होता क्या कि सफ़र में चूँकि एक मकसद होता है, जल्दी से जाओ काम करो वापस आ जाओ, अल्लाह ताला इस मकसद की तकमील में मदद क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर नमाज का वक्त आए, उठे, काम किया, फिर नमाज पढ़ने लग गए, फिर गए, तो अल्लाह ताला कहता है कि नमाज एक तो छोटी कर लो, थोड़ी कर लो, और दूसरी ये कि दो नमाजों को मिला लो। ये है हमारे दीन की खूबसूरती। फिर इसी तरह आप देखिए कि हमने इसमें सलातुल खौफ पढ़ी। सलातुल खौफ है, दुश्मन के सामने मुसलमान खड़े हैं और जमात की नमाज का इख्तिताम हो रहा है। 7-8 से ज़्यादा तरीके हैं खौफ की हालत में इमाम के जमात करवाने के। सवाल सिर्फ उन ब्रदर से कि जो आम हालात में भी जमात से नमाज नहीं पढ़ते। घरों में पढ़ लेने को नमाज कहते हैं, उन्होंने असल में नमाज की रूह नहीं समझी। घर में पढ़ने से अगर फ़र्ज अदा हो भी गया लेकिन नमाज कभी कायम नहीं होगी, जो नमाज का बहुत बड़ा मकसद है। फिर इसके बाद अब देखिए तीसरी चीज़ इन आयतों में हमने देखी कि नमाज वक्त पर है। बेवक़्त की नमाज नहीं, वो टकरे होती हैं, तो अव्वल वक्त की नमाज पढ़ लीजिए। जब आपको पता चल गया कि नमाज का वक्त शुरू हो गया तो फिर उस नमाज को आप अदा कर लें। ये ना कहिए कि अभी हमारी मस्जिद में नहीं हुआ, अभी उनकी मस्जिद में नहीं हुआ। जिस मस्जिद में नमाज का जो इब्तदाई वक्त हो उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद अब आगे कौम कौन सी जो इस तरह की अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखने वाली हो कि मैदान जंग में भी जाके नमाजों से ताल्लुक़ ना टूटे, उनको अल्लाह ताला किस तरह मदद देता है, यहाँ थोड़ी सी तसल्लियाँ भी हैं। वला ताहिनु फिब्तगाइल कौम, इस गिरोह के ताकुब में कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरफ वो भी तकलीफ उठा रहे हैं, और तुम अल्लाह से उस चीज के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं। अल्लाह सब कुछ जानता है और वो हकीम और दाना है। अब इस फैब देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला मुसलमानों को एक बहुत प्यारी सोच देता है कि अगर बिलफर्ज तुम्हें अल्लाह के रास्ते में मुश्किल आती भी है, आती कोई नहीं है वैसे, मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आई, गोली लगी, तकलीफ हुई, चलना पड़ा, पसीना बहा, और आज इल्म की बुनियाद पे आपको अगर ये सब कुछ थोड़ा और मुश्किल लग रहा है, तो अल्लाह करे देखो तुम्हारे सामने मोटिव कितना बड़ा है। तुम जन्नत लेने निकले थे कि इतनी भी तकलीफ ना आए। लोग कुफर की मोहब्बत में आके मैदान जंग में मर मर आ जाते हैं, लोग कभी ज़मीन के टुकड़ों के लिए लड़ते हैं और मरते मराते हैं, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। यह हम मुसलमानों के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। दीन के रास्ते में जितनी मुश्किलात आ रही हैं या दुनिया के रास्ते में कोई तकलीफ आ रही है, याद रखिए या तो दर्जों की बुलंदी है या गुनाहों का कफ़ारा है। जबकि काफिर को कोई भी तकलीफ आ जाए, कैंसर से मरने वाले काफिर को उस दर्द की कोई जजा नहीं मिले, है दुख की बात। ईमान कितना नफे का सौदा है कि जो इंसान की तकलीफ़ों को, उसके गमों को भी रहमत बना के उसके सामने पेश करता है। फरमाया नबी, यहाँ से आगे अब एक वाक्या है, पूरे वाक्य का थीम समझ लीजिए, फिर आप आयतें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक ऐसा वाक्या हुआ था मदीना की गलियों में कि एक शख्स ने चोरी की, और अपने ऊपर से इल्ज़ाम बचाने के लिए चोरी की हुई ज़रा जो थी वो किसी यहूदी के पास रखवा दी। उसको नहीं बताया ये चोरी की है, ये सोच के कि अगर थोड़े दिन में बात खुलेगी और इसके घर से निकलेगी तो लोग इसको चोर समझ लेंगे, और अगर बात जब दब जाएगी तो घर से आके इसके ले जाऊंगा। होशियार बहुत था। उसने वो ज़रा चोरी करके कहीं आटे के बोरे में रखी हुई थी, वहाँ से जब चोरी का वो जब उठा के यहूदी के घर के पास गया तो ज़मीन पे कुछ निशान भी छूट गए। यानी अल्लाह ताला कभी सच को छुपाता नहीं है, झूठ खुल जाता है। अब इसका हल क्या हुआ कि जब चोरी का पता चला, इसने साफ उस यहूदी पे इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए, जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो नॉन मुस्लिम है और इल्ज़ाम लगाने वाला मुस्लिम है। मत खुशफहमियों में रहें कि आप मुसलमान हैं तो आप जन्नत में बड़ी इज्जत से पहुँच जाएंगे। इवन अगर नॉन मुस्लिम्स को भी हमने सताया, उनके साथ भी ज्यादती की, तो कल क़यामत के दिन उनके भी मामले होंगे। जब इल्ज़ाम उस शख्स पे लगा, अब वो ज़ाहिर है कि इस वक्त यहूदी मुल्ज़िम बन रहा था क्योंकि उसके पास थी वो चीज़। इस शख्स की बिरादरी जो इस पूरे वाक्य का थीम है, तकरीबन दो रुकू हैं, और आप देखेंगे कि इस्लाम कितने खूबसूरत तरीके से हमें बंदगी सिखाता है कि ख़ानदान के बंदे बनने, फैमिली के बंदे बनने, उनकी गलत बातों को सही कहने सिर्फ इसलिए कि वो फैमिली है, उसका अंजाम क्या होने वाला है। इसके ख़ानदान वालों को पता था कि इसने चोरी की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चूँकि हमारी बिरादरी का बंदा है, उन्होंने इसका साथ दिया। अल्लाह के नबी के पास मामला आया, आप बशर थे, जब तक अल्लाह कोई बात नहीं बताता था, आपको नहीं पता होती थी, आपने उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया। अब ये इतना बड़ा मामला बना कि अल्लाह ने आसमान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म का टोक दिया कि देखिए आप इनकी चर्ब ज़बानी और इनकी बातों की में आकर कहीं गलत फ़ैसले ना कर दें, और अगर आपने ऐसा किया तो कल क़यामत के दिन ये लोग भी आपको नहीं बचा सकते। हम सब के माली मामलात की बंदगी का ये बेहतरीन वाक़या होगा अगर हम इसको गौर से सुने। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक लितहकुम बैनन्नास, ए नबी, हमने ये किताब हक के साथ आपकी तरफ नाजिल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह ताला ने आपको दिखाई है इसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसले करें। आप बददियानत लोगों की तरफ से झगड़े करने वाले न बने, और अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करें, वो बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। जो लोग अपने नफ्स से ख़यानत करते हैं तुम उनकी हिमायत ना करना, यानी जिसने चोरी की उसने अपने नफ्स के साथ ख़यानत की, इसको नोट कर ले। हम जो भी गुनाह करते हैं ना, हम अपने इस नफ्स को जहन्नुम में डालते हैं। देखिए, नफ्स का हक क्या है कि हम इसको जहन्नुम से बचाएं। गुनाह करते हैं ना तो ये नफ्स की ख़यानत है क्योंकि इस बेचारे को जहन्नुम में जाना पड़ेगा। अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं जो ख़यानत कार और मासियत पेशा हो। ये लोग इंसानों से अपनी हरकत को छुपा सकते हैं लेकिन वला यस्तगफून मिन अल्लाह, लेकिन ये अल्लाह से बिल्कुल नहीं छुपा सकते। वो तो उस वक्त भी उनके साथ होता है जब ये रातों को छुपकर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मशवरे करते हैं। इनके सारे आमाल पर अल्लाह मुहीत है। हाँ, तुम लोगों ने इन मुजरिमों की तरफ से दुनिया की ज़िंदगी में तो झगड़ा कर लिया, अब ये उसकी कौम को कहा जा रहा है कि आज तो ख़ानदान का फ़र्द होने की वजह से उसके झूठ में साथ दिया, मगर क़यामत के रोज़ इनकी तरफ से कौन झगड़ा करेगा, आखिर वहाँ कौन इनका वकील होगा। अगर कोई शख्स बुरा फेल कर गुजरे या अपने नफ्स पर जुल्म कर जाए और इसके बदले अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे तो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और रहीम पाएगा। हम सब को अमल का नुक्ता मिल गया कि हमने कभी गलत चीज़ पे लोगों का साथ नहीं देना, चाहे अपने सगे माँ बाप ही क्यों ना हो, अपने बहन भाई क्यों ना हो। मगर जो कोई बुराई कमा ले तो इसकी ये कमाई उसी के लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है और वह हकीम और दाना है। फिर जिसने कोई खता या गुनाह करके इसके इल्ज़ाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया। देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, गुनाह क्या किया, चोरी की, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह कि एक बेगुनाह पर इल्ज़ाम लगा दिया। हम सोचें अपनी चर्ब जुबानियों, अपनी होशियारियों से कहीं दूसरों पर तो नहीं बात डाल देते। बहुत सारों ने तो अपने शौहर का नाम जुबान की टिप पर रखा हुआ है। अपने दीन से दूरी की हर एक की वजह शौहर, शौहर नहीं पसंद करते, उनको अच्छा नहीं लगता। कल के आमद के दिन ये शौहर हमारा गिरेबान थामेंगे। कुछ ने बच्चों को, मासूम बच्चे, बच्चे 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 ना हो गए, क्या हो गए, इंसान के बच्चे हैं क्या हमारे बच्चे, हमारे काबू में नहीं। तो याद रखिए, ये मुस्तकबिल की एक बहुत बुरी नवीद है आपके लिए कि आज छोटा सा बच्चा आपके बस में नहीं, कल जब ये आपके कद के बराबर होगा तो आपके बस में होगा। हम अपने बच्चों को अल्लाह का बंदा बना के पालें, फिर देखिए वो कल हमारी बात मानेंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो गुनाह करके बेगुनाह पर इल्ज़ाम लगा दे, इसने तो इख्तमला बुहतान व इस्मा मुबीना, बहुत बड़े बुहतान और सरी गुनाह का बार समेट लिया। या नियत कीजिए अपने लिए, गलती की है तो फिर मानूंगी भी। कुछ लोग गलतियां करते हैं लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी खूबी होती है, हमेशा अपनी गलती का इकरार करते हैं। बंद करेंगे तो अपनी सच बोलेंगे, चाहे 10 बुराइयां करें। और कुछ होते हैं उनका तो दिल करता है कि अपनी सारी गलतियों का जिम्मा या उस्तादों को लगा दें, या मैनेजमेंट वालों को लगा दें, या शौहरों को, या घर वालों को। कोई ताबुन ही नहीं करता, कोई समझते नहीं हमारा मसला। हमारी दोस्तें ऐसी, हमारे फुलाँ ऐसे, तो हक के खिलाफ बात ना कीजिए। अगर वाकई हमारी अपनी सुस्तियाँ, हमारी कमी है, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी वो दूर कर दे।